ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी काम बाधित नहीं होगा। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए डीएमआरसी सारथी मोमेंटम 2.0 ऐप पर एकीकृत यात्रा समाधान की शुरुआत की। लोक निर्माण विभाग ने सोनिया विहार में 6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के निर्माण की घोषणा की। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कल आयुष्मान भारत योजना को राजधानी में लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, परियोजनाओं से 3 राज्यों के 15 जिलों को लाभ मिलेगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी काम दिल्ली सरकार की वजह से बाधित नहीं होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में श्रीमती रेखा गुप्ता ने ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन की यादों को ताजा करते हुए कहा कि मुझे नेतृत्व कुशलता समझाने वाला दिल्ली विश्वविद्यालय का दौलत राम कॉलेज है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वह पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में आई हैं। प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज वे इस परिसर में खड़े होकर कह सकती हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो नाम दुनिया में है उसे और बढ़ाना है और पूरी दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को इस स्तर पर लाना है ताकि हर एक बच्चे को स्कूल से लेकर कॉलेज तक बेहतर शिक्षा प्राप्त हो।
मैं आज इस परिसर में खड़े होकर के इतनी बात कह सकती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम जो विश्व में है इसे और बढ़ाना है और पूरी दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को इस स्तर पे लेके जाना है ताकि हर एक बच्चा जो एजुकेशन उसको स्कूल से लेके कॉलेज तक की यानी केजी से पीजी तक का जो उसका एजुकेशन सिस्टम में उसे सहयोग मिले वो बेहतर होना चाहिए।
इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा को आगे बढ़ाने में डीयू पूर्ण सहयोग दिल्ली सरकार को देगा। दिल्ली मेट्रो ने डीएमआरसी सारथी मोमेंटम 2.0 ऐप पर एकीकृत यात्रा समाधान की शुरुआत की है। इस नई पहल से यात्रियों को एक ही बार मेट्रो टिकट लेकर अपनी यात्रा के पहले और आखिरी स्टेशन के लिए बाइक, टैक्सी और ऑटो रिक्शा बुक करने की सुविधा मिलेगी, जिससे मेट्रो यात्रा का अनुभव और भी सरल तथा सुविधाजनक हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
एक निजी संस्था के सहयोग से विकसित की गई इस पहल का उद्देश्य मेट्रो स्टेशनों और अंतिम गंतव्यों के बीच दूरी को कम करना है, जिससे यात्रियों को विभिन्न बुकिंग के लिए अलग अलग ऐप्स का उपयोग ना करना पड़े। उपयोगकर्ता गंतव्य स्थल दर्ज करता है, जिसके बाद ऐप निकटतम मेट्रो स्टेशनों और सबसे बेहतर प्रथम और अंतिम गंतव्य परिवहन के विकल्पों का सुझाव देता है। उपयोगकर्ता द्वारा अपना गंतव्य चुनने के बाद उनके स्थान से निकटतम मेट्रो स्टेशन तक पिकअप के लिए बाइक, टैक्सी या ऑटो रिक्शा बुक किया जाता है। गंतव्य स्टेशन के पास पहुंचने पर अंतिम स्थान तक अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए एक और सवारी की व्यवस्था की जाती है। यह सेवा यात्रियों को मेट्रो टिकट और अंतिम मील यात्रा के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करती है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुगम यातायात के लिए लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज 500 करोड़ रुपए की लागत से सोनिया विहार पुस्ता पर 6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के निर्माण की घोषणा की। ये एलिवेटेड रोड नानकसर गुरुद्वारा टी पॉइंट से दिल्ली यूपी बॉर्डर ट्रॉनिका सिटी तक बनाया जाएगा। इस अवसर पर श्री वर्मा ने कहा कि सोनिया विहार के लोगों को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए ये परियोजना काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ होने के कारण एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया गया है।
कल हमने मुख्यमंत्री जी से बात की थी, उन्होंने भी अपनी हाँ करी है। तो ये लगभग 5.5-6 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनेगा और ये रोड के दोनों तरफ में पिलर आएंगे। इसमें एस्टिमेट बनाए 500 करोड़ का। इसका प्राइमा फेसिया एक इसकी मंजूरी हमें मिल गई है। तो ये फ्लड डिपार्टमेंट का रोड है, फ्लड से पीडब्ल्यूडी को इसको ट्रांसफर कराएंगे, एनओसी लिखवाएंगे। पहले पीडब्ल्यूडी इसका डीपीआर बनाएगा और उसके बाद में इसका काम शुरू करेंगे।
वहीं कैबिनेट मंत्री और करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और श्री वर्मा को इस स्वीकृति के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस एलिवेटेड रोड से इस क्षेत्र में यातायात की समस्या कम होगी और लाखों लोगों को राहत मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कल नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी रंगभवन सभागार में आयुष्मान भारत योजना को राजधानी में लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल होंगे। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि योजना लागू होने के बाद इसमें शहर के 1 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे शहर की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से 3 राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 1,247 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में संबलपुर जरपाड़ा तीसरी और चौथी लाइन, झारसुगुड़ा सासन तीसरी और चौथी लाइन, खरसिया नया रायपुर परमल कासा पांचवी और छठी लाइन और गोंदिया बल्हार शाह का दोहरीकरण शामिल है। श्री वैष्णव ने कहा कि इन मल्टी ट्रैकिंग प्रस्तावों से परिचालन आसान होगा और भीड़भाड़ कम होगी, जिससे रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास होगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से 19 नए स्टेशन बनेंगे और 2 आकांक्षी जिलों गढ़चिरौली और राजनांदगांव से संपर्क बढ़ेगा। इससे तेल आयात में भी कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे लगभग 3,89,00,000 मानव दिवसों का सृजन होगा।
तालचेर अनुकूल से लेके ऑल द वे टू संबलपुर सिटी अभी डबल लाइन है। इस डबल लाइन को आप 3rd और 4th यानी क्वाड्रोप्लिंग करेंगे, 4 लाइन्स यहाँ पर बनेंगी। इस प्रोजेक्ट में भी बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जाएगा, 3,917 करोड़, और एक्सट्रीमली बिजी एरिया ये पैराडीप पोर्ट, धामरा पोर्ट और नीचे गोपालपुर पोर्ट, और इधर तालचेर अनुगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा और आगे फिर रायपुर वाली साइड, बिलासपुर वाली साइड। इससे बहुत उड़ीसा की जीडीपी में इंक्रीज आएगा, देश की जीडीपी में भी इंक्रीज आएगा और तालचेर संबलपुर एरिया में बहुत अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इससे बढ़ेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,839 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस कार्यक्रम से उन ब्लॉकों के गांवों का व्यापक विकास होगा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास होंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ वहां रहने वालों को जीवन यापन की सुविधाएं देना है। इससे पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी और इन गांवों की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट पे सेकेंड इसका फेज अप्रूव किया। इंडो चाइना बॉर्डर पे 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर और आज सेकेंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए। अब उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी जितने भी एरियाज हैं, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के और बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरिया, इन सबको कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ओडिशा से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मादक पदार्थ की अवैध तस्करी में शामिल एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को रोहिणी क्षेत्र के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ई रिक्शा के माध्यम से तस्करी करता था। आरोपी के पास लगभग 25 किलो का मादक पदार्थ प्राप्त हुआ है। जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 12,50,000 रुपए है। दिल्ली नगर निगम के महापौर महेश कुमार की अध्यक्षता में आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह की तैयारियों पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जयंती समारोह को भव्य और सार्थक बनाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में निगम के वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्रीय उपायुक्त और विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे। महापौर ने इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियों को समय पर पूरा कर लिया जाए। भारत मानव वन्यजीव पर्यावरण इंटरफेस पर जूनोटिक स्पिल ओवर जोखिमों का समाधान करने के लिए एक अंतर मंत्रालय वैज्ञानिक अध्ययन शुरू करेगा। ये अनूठा अध्ययन सिक्किम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में चुनिंदा पक्षी अभयारण्यों और आर्द्र भूमि में किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि व्यापक शोध परियोजनाओं का उद्देश्य पक्षी अभयारण्य के श्रमिकों और आसपास के निवासियों में जूनोटिक रोगों का पता लगाने और उनका निदान करने के लिए एक वास्तविक समय निगरानी मॉडल विकसित करना है। मंत्रालय ने कहा कि आज नई दिल्ली में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद मुख्यालय में चुनिंदा पक्षी अभयारण्यों और आर्द्र भूमि पर एक अध्ययन शुरू किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने मनोज कुमार की प्रतिष्ठित फिल्में जैसे क्रांति, उपकार, पूरब और पश्चिम को कालजयी फिल्म बताया। उन्होंने कहा कि इन फिल्मों के माध्यम से उन्होंने जन जन में देशभक्ति की भावना का संचार किया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि श्री कुमार का सिनेमा में योगदान सदैव सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। दिल्ली विधानसभा परिसर में रविवार को भगवान महावीर गाथा नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव और 2624वें जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में और विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बीड़ी और सिनेमा उद्योग तथा गैर कोयला खदान श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले 92,000 से अधिक बच्चों को कुल 32,51,00,000 रुपए वितरित किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि पात्र बच्चों को स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। ये योजना श्रम कल्याण महानिदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 18 क्षेत्रों में श्रम कल्याण संगठन द्वारा लागू की जाती है। दिल्ली मेट्रो ने चरण 4 के अंतर्गत 3 शेष कॉरिडोर इंद्रलोक, इंद्रप्रस्थ, साकेत जी ब्लॉक, लाजपत नगर और रिठाला, नरेला, नाथुरपुर के लिए कोष प्राप्त कर लिया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि इसके लिए भारत सरकार और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA के बीच 27 मार्च को 4,300 करोड़ से अधिक रुपए की राशि के लिए ऋण समझौते की पहली किस्त पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि इसके बाद अब निविदा कार्य में तेजी आएगी और उसके बाद निर्माण गतिविधियां शुरू होंगी। सरकार ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रभाव से राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 में 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 930 हो गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बाल लिंगानुपात में कमी और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए वर्ष 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन अनुपात वर्ष 2014-15 में लगभग 75% से बढ़कर 2023-24 में 78% हो गया है। राजधानी में आज दिन में तेज धूप खिली रही। आज का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी काम बाधित नहीं होगा। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए DMRC सारथी मोमेंटम 2.0 ऐप पर एकीकृत यात्रा समाधान की शुरुआत की। लोक निर्माण विभाग ने सोनिया विहार में 6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के निर्माण की घोषणा की। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कल आयुष्मान भारत योजना के राजधानी में लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।